एक सवाल ये है कि सब्र बहुत बड़ा अमल है और उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, तो हदीस में लेकिन हमें मना किया गया है सब्र नहीं मांगना चाहिए। ये बात भी सही है कि सब्र मांगना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो हालांकि इतना बड़ा अमल है तो इंसान अपने गुस्से को बर्दाश्त करना और उस पर सब्र करने के लिए फिर दुआ अगर नहीं मांग सकता तो किस तरह फिर क्या दुआ करे। यानी सवाल में ज़ाहिर है कि वो मफहूम इसका यही है, यानी हासिल यही है कि सब्र मांगने से मना किया गया, हालांकि सब्र की इतनी बड़ी फजीलत है और इंसान को सब्र की ज़रूरत भी पेश आती है, तो फिर दुआ क्या मांगे। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो सब्र मांगो नहीं, सब्र मांगने का मतलब यह है कि हम तकलीफ़ मांग रहे हैं कि उस पर फिर हम सब्र करें। या इसी तरह जैसे हमारे उलमा ने फरमाया कि किसी का नाम साबिरा रखो नहीं, साबिर ना रखो, साबिरा ना रखो, इसका मतलब यह है कि हम उसके लिए, इसलिए कि नाम का एक असर होता है, तो हम गोया कि उसको तकलीफ़ों के लिए पेश कर रहे हैं कि वो सब्र करना पड़ेगा उसको। ज़ाहिर इंसान मजबूरी में तो सब्र करता है तो करना पड़ेगा। तो इस लिहाज इस माना के एतबार से सब्र मांगना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गोया कि तकलीफ़ मांग रहे हैं। लेकिन अहादीस की दुआओं में हमें ये मिलता है अल्लाहुम्म ज़य्यिनी बिलहिल्म, हिल्म, हिल्म के माना जब कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो मैं उसके मुकाबले में हिल्म का मामला करूं। तो वह हिल्म वो है, वो एक अच्छी सिफत है और वो इंसान मांगे, वो हर वक्त हो सकती है, चाहे कोई तकलीफ़ आए या ना आए, हर वक्त इंसान हिल्म का मामला कर सकता है। लेकिन उस वक्त भी ख़ास तौर पर होता है जब इंसान को कोई गुस्सा दिलाने वाली चीज़ पेश आ जाए, वह इंसान हलीम बनकर हिल्म का मामला करे और गुस्से का इजहार ना करे। या हम ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हर किस्म की तकलीफ़ों से महफूज फरमा ले, अगर कोई तकलीफ़ आ जाए तो या अल्लाह फिर तो उस पर या अल्लाह उसको उस पर सब्र भी अता फरमा दे कि मैं कोई यानी ऐसी चीज़ न कर लूँ जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, गुस्से वगैरह का ऐसा इजहार न कर लूँ जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, इस तरह की दुआ मांग सकते हैं। लेकिन मुतलक सब्र की दुआ कि या अल्लाह मुझे सब्र का मौका दीजिए और मुझे सब्र करने की तौफीक, यानी ज़ाहिर है कि वो मांगना, हाँ कोई मुसीबत आ चुकी है उस पर सब्र, हाँ ठीक है, जैसे जब किसी के यहाँ इंतकाल होता है उसको दुआ देते हैं अल्लाह ताला सब्र सब्र जमील अता फरमाए, तो जब तकलीफ़ आ चुकी उस पर सब्र मांगना वो तो साबित है। लेकिन तकलीफ़ आने से पहले वैसे ही अमूमन सब्र की दुआ करना कि मुझे सब्र का मौका मिला, ये मना किया गया है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सवाल ये है कि अगर शोहर सैयद हो, बीमार हो, ज़रिया आमदनी कोई ना हो, तो क्या बीवी को ज़कात दे सकते हैं अगर बीवी सैयद ना हो? इसमें इन शराइत की ज़रूरत नहीं है कि वो बीमार हो और कमा ना सकता हो वगैरह। अगर बीवी वो मुस्तहिक ज़कात है, उसके पास आमतौर से औरतों के पास पैसों का तो सिलसिला आमतौर से नहीं होता अमूमन, लेकिन ज़ेवर वगैरह होते हैं, तो अगर उसके पास ज़ेवर इतने नहीं हैं जो ज़कात की मकदार को पहुँच जाते हों, तो फिर हाँ, यानी चाहे शोहर कमा भी सकता हो और उसके पास यानी निसाब से ज़ायद पैसे भी मौजूद हो, तब भी बीवी अगर सैयद नहीं है, वो सैयद ख़ानदान की नहीं है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। और इस सूरत में तो ज़ाहिर है और ज़्यादा उसका इस्तेहक़ाक बनता है कि उसे ज़कात दी जाए। ये तो खैर मसले की बात हो गई, लेकिन लेने वाले के लिहाज से तो ये बात हो गई, लेकिन जहाँ देने वाले की बात है कि हमें अगर पता हो कि अगर कोई सैयद ख़ानदान का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से किसी का ताल्लुक है और वो ज़कात नहीं ले सकता, जो कि हम जानते हैं कि वो ज़कात नहीं ले सकता, तो और कुछ ना हो, कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारी का एक हक़ इतना तो हमारे ज़िम्मे बनता है कि हम क्यों सिर्फ फ़र्ज़ जो ज़कात है वही अदा करें, कुछ नफिल सदक़ात के ज़रिए से उनकी इमदाद कर दें। तो अगर ऐसे लोग मिलें और किसी के इल्म में आए तो अपनी बहुत बड़ी सआदत समझकर ऐसे लोगों की इमदाद करनी चाहिए। ये आखिरत में एक बहुत बड़े दर्जे का ज़रिया और बल्कि दुनिया में रहकर भी बहुत सी मरतबा इस तरह की बशारतें इनके लिए इनको हासिल हो जाती हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मशहूर है, अगर मुझे सही याद हो, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, पहलवान थे और कुश्ती लड़ा करते थे, और वहाँ कुश्तियों में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो यानी एक मरतबा बहुत बड़ा मुकाबला पेश होने वाला था और उसमें एक शख्स उनको गोया कि वो जैसे होता है बड़ा दरबार लगता है और शाही लोग भी बैठे हुए हैं, और इनको कुश्ती के लिए पेश किया गया, कोई है कुश्ती लड़ने वाला, एक शख्स मुकाबले के लिए आया, बिल्कुल कमज़ोर ज़ईफ़ किस्म का आदमी था, और वो आया आगे, और सब लोग हंसने लगे कि अच्छा ये क्या मुकाबले के लिए आया। इसने आकर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में कह दिया कि मैं ज़रूरतमंद हूँ और मैं सैयद हूँ। बस ये कहना था, उनकी हालत बदल गई। अब वहाँ पर ये भी तो हो सकता था कि अच्छा जो मुकाबला जीत गए वो जीत कर अच्छा ठीक है पैसे उनको दे दें, ये भी तो हो सकता था। लेकिन इस सैयद का एहसास तो अपनी जगह पर होता है, उनका एक मकाम है। चाहे वो जैसे भी थे कुश्ती लड़ने वाले थे, लेकिन इस चीज़ का जब उन्होंने ख्याल रखा, ये हुआ ये कि उन्होंने कसदन गोया थोड़ा सा लड़ने की कोशिश की, लेकिन गोया कि इस तरह कर लिया कि अच्छा उन्होंने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को गिरा दिया और ये वो ऊपर आ गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं ये कुछ शायद सही नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। बहरहाल ये दो तीन मरतबे के मुकाबले में जुनैद रहमतुल्लाह अलैह जब गिर गए तो मुकाबले में वो जीत गए, इनाम सब वो ले गए। लोगों को ताज्जुब हुआ, बात समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। वो तो रास्ता इन दोनों के दरमियान, किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ। लेकिन फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी, और उसके बाद उनका जो मकाम जो बदला है, तो हम उनको जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह यानी अवलिया के भी सरदारों के सरदार समझे जाते हैं, अपने ज़माने के थे और अब तक भी ज़ाहिर है कि वो सिलसिले हमारे जो मशायख के हैं वो उनसे जाकर मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा एहसास है, अगर किसी को मौका मिले किसी सैयद के बारे में पता चल जाए कि वो ज़रूरतमंद हो, तो ये तो बहुत बड़ा सुनहरी मौका है फजीलत हासिल करने का, आखिरत के लिहाज से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिहाज से। ये मैं इसलिए ख़ास तौर पे ये बता रहा था कि हम लोग हमारे फतावा वगैरह में भी मसाइल बहुत कसरत से आते हैं और लोग यानी इस ज़माने में सवालात करने वाले के लिहाज से नहीं, हमारी किताबों में जो मतबूआ फतावा है उनकी बात कर रहा हूँ कि बहुत कसरत से ये सवालात हैं कि अच्छा सैयद को ज़कात यानी क्यों ज़कात ही देनी है, क्या वजह है कि हम नफिल सदक़ात नहीं दे सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का हम थोड़ा कुछ ख्याल करके, कुछ लोग अच्छा चलो ठीक है एक आदमी नहीं चंद लोग मिल के ही अच्छा कुछ ऐसी तरतीब बना लें कि जो सैयद हैं हमारे इलाके में, नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस तरह के लोग मारूफ होते हैं, तो अच्छा ठीक है अगर उनके यहाँ ऐसी हालत है तो अच्छा कुछ लोग मिलकर ये अगर इसके इंतज़ाम कर लें तो सबके लिए एक बहुत बड़ी सआदत की चीज़ हो जाएगी। सवाल यह है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा गुरबत है तो वहाँ ज़कात देने की बेहतर सूरत क्या होगी, कैश पैसे दें या खाने पीने की चीज़ें दे दें। ये देखा जाए कि उनको किस चीज़ में ज़्यादा नफ़ा है, जिसको आम तौर से फुकहा कहते हैं कि अनफ़ाल अलफ़ुक़रा, अगर पैसे देने से उनकी ज़्यादा ज़रूरत आसानी से पूरी होती है तो पैसे दे दें। आम तौर पर आजकल ऐसा ही होता है कि पैसे दे दिए तो उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि पैसे देंगे तो हो सकता है कि किसी मर्द के हाथ में पैसे चले गए, हो सकता है कि उसकी आदत कुछ और भी हों जो फजूलियात की आदत हो, तो फजूलियात में अगर उड़ा देगा तो घर में वही फ़क्र फाका और तंगी रहेगी। बाज़ों को नशे की आदत हो तो या बाज़ों को कुछ और आदतें होती हैं, तो उसमें अगर ये अंदेशा हो तो अच्छा है कि फिर खाने पीने की चीज़ें दे दें, असल पैसे हैं। लेकिन जहाँ अगर ये अंदेशा हो कि चाहे शायद फजूलियात में उनकी रकम चली जाएगी तो फिर खाना पीना दे दें, यानी ये देखना देखकर फैसला करना है कि उनकी ज़रूरत किस में ज़्यादा अच्छी तरह पूरी हो सकती है और उनके उनके घर वालों की। बच्चे का नाम आकिब रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, कह रहे नहीं। सवाल यह है कि ऐसे नए नए स्पीकर्स आजकल आ रहे हैं जो नए नए मसाइल ला रहे हैं कि नमाज़ों की कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़े में टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह, और लोग उनके पीछे, ज़ाहिर है कि ये तो जैसे यानी ये मिसाल जो दी है मसले के लिहाज से वो तो खैर अलग मसला है, लेकिन वैसे ये बात सही है कि जैसे अभी ज़िक्र आया था कि इस उम्मत में फितने तो कसरत से आएंगे लेकिन हक़ पर जमी रहने वाली एक जमात वो बाकी रहेगी, वो तो क़्यामत तक बाकी रहेगी जब तक अखीरी दौर बिल्कुल अखीरी क़्यामत का वक्त करीब नहीं आ जाएगा। तो ये तो खैर आते रहेंगे, उसके लिए अच्छा माहौल और अच्छे लोगों से जोड़ना ज़ाहिर है ख़ुद इंसान को اپنی کوشش اور دوسروں کو خاندان والوں کو جوڑنے کی کوشش، یہ ظاہر ہے کہ جس حد تک ہو سکے کوشش کرتا رہے، بظاہر یہی اس کا حل ہے۔ لیکن ہاں، جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ روزے میں یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور بعضوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بالکل دو طرف ہے، حالانکہ اس میں مسئلے کی صورت جو ہے وہ درمیانی ہے۔ درمیانی یہ ہے کہ کسی چیز کا کھانا اور اندر حلق کے اندر اتارنا، اس سے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا چکھنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو ہم جو عام طور سے منع کرتے ہیں کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس منہ میں رہ جانے کے بعد کچھ نہ کچھ حلق میں اترنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ظاہر ہے جب حلق میں اگر اترے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو یہ روزہ فاسد ہونے کا احتمال وہاں پایا جاتا ہے۔ اگر اسے انسان بہت کوشش کرے تو بس ہر سرسری دانتوں پر لگا لیا اور کلی کر کے نکال دیا، اچھی طرح بار بار کلی کر کے نکال دیا، اس طرح کہ اس کو، یعنی اس کو اب یقین ہے کہ نہیں گلے کے اندر کچھ نہیں جائے گا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو فاسد ہونے نہ ہونے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ گلے میں کچھ اگر اندر جائے گا تو، اور گلے میں اس کا ذائقہ کچھ محسوس ہوگا تو روزہ فاسد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی، یعنی اگر حلق میں کچھ بھی نہیں جاتا، اس کا یقین ہے، تب بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ روزے میں کسی چیز کا چکھنا جو ہے وہ بھی مکروہ ہے، تو یہ چکھنے کے حکم میں تو کم از کم آ جائے گا۔ تو بس یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے دیکھ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھنا کہ اس کا روزہ فاسد ہی ہو گیا، یہ نہیں۔ ہاں، نہیں کرنا چاہیے، وہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو ہم فاسد نہ سمجھیں روزے کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جس میں بعض جگہوں پر اس کو لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، بعض میں ہوتا ہے مدنی صورت ہے، کیا اس میں اختلاف ہے؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن کریم سے جو اصل مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی، وہ تو الفاظ ہمارے سامنے پوری طرح محفوظ ہیں، لیکن جہاں تک اس کی تاریخ ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جس کو مدنیہ کہہ دیں اس صورت کو یا آیت کو، یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ تو تاریخی لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اور سورت کب نازل ہوئی ہے، اس میں تو بہت سی صورتوں میں اختلاف ملتا ہے اور بہت سی آیتوں میں اختلاف ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں اگر انسان اس سلسلے میں، یعنی ویسے ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا کہ وہ تحقیق کرے کہ اچھے مکہ کے دور کی ہے یا مدینہ کے دور کی ہے، اس کے لحاظ سے کچھ مزید انسان کو اس پر روشنی ملتی ہے، لیکن اس سے نفس آیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آیت جیسی تھی، اس میں جو سبق ہے، اس کا جو ترجمہ، اس کی جو تفسیر، وہ پوری باقی رہے گی۔ بس اتنا ہے کہ دور کا فرق ہے کہ تاریخی لحاظ سے مکہ کے دور ہے یا مدینہ کا دور۔ ہاں، اس میں ضرور اختلاف ملتا ہے، اور یعنی تو اس میں کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، بلکہ بعضوں نے کوشش کی کہ قرآن کریم کو جمع کرے حسب النزول، جس طرح نازل ہوا تھا اس ترتیب سے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ چونکہ اگر مقصد وہ ہوتا تو صحابہ کے دور میں اس طرح محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں تھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے رکھا ہے، بلکہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے نہیں اس آیت کو وہاں رکھ دو، اس آیت کو وہاں۔ اب وہ آیتیں حسب النزول اگر اس کو جمع کیا جائے گا تو کوئی مرتب کلام بنے گا ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ حسب النزول چونکہ مقصود ہی نہیں تھا تو اس کو محفوظ بھی نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ کل تہجد کے موقع پر جو حدیث بیان کی تھی، اس کا کچھ حصہ، اخیر کا حصہ، خلاصہ اس کا وہی تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو دنیا میں ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی ذکر اللہ، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی بھی چیز ہو ذکر اللہ سے متعلق، کوئی بھی چیز انفرادی یا اجتماعی شکل میں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، تو فرشتے جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں ہیں، تو کسی ایک کو مل گیا تو دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، آ جاؤ یہ ہے جو تم تلاش کر رہے تھے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، جمع ہوتے 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 اتنی کثرت سے کہ آسمان دنیا تک جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال جواب ہوتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور بھی ظاہر ہے بخاری میں ہے تو اور جگہوں پر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتے ہیں، اس کے تذکرہ کل ہوا تھا۔ क्या सवाल जवाब होते हैं कि अच्छा मेरे बंदों को किस हाल में पाया, अच्छा वो क्या मांग रहे थे, किससे पनाह मांग रहे थे, वो पूरी तफसीलात पूरी मुफसल रिवायत थी, कल उसका जिक्र आया था। आखिर में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा तुम फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने इन सब की मगफिरत कर दी, तो एक फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये आपने सबकी मगफिरत का ऐलान कर दिया, हालांकि उनमें एक फ़लाना बंदा है जो इसलिए आया ही नहीं था कि वो जिक्र करे, वो तो बस किसी ज़रूरत से आया था तो वहाँ बस वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गया, उनके पास से गुजर रहा था, तो उस मजमे में उस वक्त शामिल था जिस वक्त के लिए आप मगफिरत का ऐलान कर रहे हैं, हालांकि उनमें शामिल नहीं था, उस मकसद के लिए नहीं आया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, फिर भी इनकी मगफिरत मैंने कर दी, इसलिए कि हुमुल कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे लोग हैं कि उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रखा जाता। ये हदीस थी, अगर उसके बारे में कोई और सवाल हो, बाकी इसको थोड़ा ज़रा सा तफसील के साथ मैंने कल रात को बयान कर दिया था। शायद सवाल जो है वो ये है कि किसी ने सवाल ये क्या है कि रोज़े की हालत में वैक्सीन लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में इंजेक्शन वगैरह, ये जो वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं, ये लगा सकते हैं, इसलिए कि ये बराह रास्त चूँकि ज़ाहिर है कि वो कोई आजकल यानी बहुत ही नादिर ऐसे कोई इलाज होते होंगे कि जिसमें डायरेक्ट बराह रास्त मैदे में दवाई पहुँचाई जाती हो, तो चूँकि ये तो जिस्म में लगाया जाता है, पेट में यानी जहाँ मैदा में जहाँ खाना जाता है उस जगह नहीं बल्कि जिस्म में लगाया जाता है, तो रोज़े की हालत में इसको लगा सकते हैं, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله